الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो शाम वाली इस क्लास में, जो कि पीर और बुध की शाम को हुआ करती है, इसमें हम मआरिफुल कुरान के जिल्द नंबर 1 में से मुकद्दमा मआरिफुल कुरान पढ़ रही हैं, जो हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मआरिफुल कुरान के असल मुअल्लिफ हैं, कंपाइलर हैं, उनके कहने पर उनके फर्जंद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहम अलिया ने मुरत्तब फरमाया। तो इस मुकदमे का बिल्कुल आखिरी उनवान चल रहा था पिछली क्लास में, यानी मशहूर तफसीरें, जो कि उम्मत ने अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह ताला के कलाम के ऊपर लिखी। तो हज़रत ने जैसे कहा था, जैसे इसमें लिखा था कि कुरान करीम की बेशुमार तफसीरें लिखी गईं, किसी किताब की इतनी खिदमत नहीं की गई जितनी कि कुरान करीम की गई। यानी पढ़ना तो एक तरफ ना, क़िरात करना, क़िरात की कितनी खिदमत की अल्लाह ताला की तौफीक से इस उम्मत ने, और इसकी ज़ुबान की कितनी खिदमत करी। यानी कुरान मजीद की ज़ुबान कैसे महफूज है कि आज के दौर में भी 1400 साल गुजरने के बाद एक बच्चा भी जो है वो कुरान मजीद की ज़ुबान बिल्कुल वैसे ही सीख सकता है जैसे कि वो 1400 साल पहले थी। यानी हर ज़ुबान जो है वो चेंज हो जाती है ज़माने के साथ। 200 साल, 100 साल के अंदर ही ज़ुबान के अंदर कितनी सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये ज़ुबान कुरान मजीद के अरबी, ये सुभान अल्लाह। तो ज़ुबान की खिदमत करी, फिर उसके बाद इसके अल्फाज की हिफाजत की खिदमत करी, यानी हुफाज़ कराम इस कुरान मजीद के कितने हैं कि जिनका कोई शुमार ही नहीं किया जा सकता। 100 साल का बूढ़ा भी कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लेता है, और 6 साल का, 5 साल का बच्चा भी कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लेता है। ऐसी मिसालें आज भी मौजूद हैं कि 5-6 साल की उम्र के अंदर ही हाफिज़ हो गए। ऐसी मिसालें इस दौर के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये सब का सब जो है वो क्या है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की और इस कुरान मजीद की हक्कानियत की एक से बढ़कर एक दलीलें। यानी साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ द कुरान की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ द कुरान में जाने की। वो तो मुसीबत पड़ गई है साइंस की, जो सो कॉल्ड एक मरूबियत हमारे ऊपर बैठी हुई है हमारे गुलामी की वजह से, तो इस वजह से साइंटिफिक मेडिकल्स ऑफ द कुरान की बात करने की ज़रूरत पड़ती है। वरना तो उसके अलावा ही इतने कुरान मजीद की के एजाज हैं, इतने आलीशान बातें हैं कि किसी के भी इत्मीनान के लिए वही काफ़ी हैं। तो मशहूर तारीफ़ों में से हमने जो तफसीर इबन जरीर का पढ़ लिया था, इबन कसीर, तफसीर अल कुरतुबी और तफसीर कबीर। अब आज जो है वो पेज नंबर 57, जो शायद आपके सामने शेयर हुआ हुआ होगा, उसमें है तफसीर अल बहरुल मुहीत। ये फरमाते हैं कि अल्लामा अबू हय्यान गरनाती अंदलुसी, अबू हय्यान, तो ये भी अंदलुस में रहने वाले थे, और इनसे पहले वाले जो फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह थे, ये भी मुस्लिम स्पेन, हस्पानिया जिसको कहते हैं, हस्पानिया पे मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत करी। जब हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने हस्पानिया पर पहला अटैक किया, और उसके बाद फिर फुतुहात होती गई होती गई होती गई, हत्ता कि तकरीबन पूरा का पूरा स्पेन, जो कि इंतहाई बड़ा यूरोप का मुल्क है, फ्रांस के बाद शायद इसी का रकबा आता है, इतना बड़ा यूरोप का मुल्क है, पूरा का पूरा मुसलमानों के पास था। और खाली 100 साल या चंद दिहाइयों के लिए नहीं, बल्कि 800 साल तक, ठीक है। लेकिन जब मुसलमान इस्लाम को छोड़ देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं या अय्याशियों में लग जाते हैं, तो फिर 800 साल की हुकूमत का होना भी जो है वो उनको काम नहीं देता। ठीक है ना, कि भाई इतनी पुरानी हुकूमत है तो इसको जाते जाते भी देर लगेगी। नहीं, ये हुकूमत 1 साल के अंदर ख़त्म हुई है मुसलमानों की, यानी 1 साल पहले मुसलमानों की हुकूमत थी स्पेन के ऊपर, और विद इन 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के अरसे में ईसाई गालिब आ गए और फिर इतना मारा मुसलमानों को कि कोई मुसलमान वहां पे बाकी बचा ही नहीं। तस्वुर करें, हम सोच सकते हैं इस तरह की बात कि कहाँ तो हुकूमत के ऐसे डंके बज रहे हैं और ऐसे ऐसी उसके अंदर जो है वो तरक्कियां हो रही हैं और उलूम फ़नून के ऊपर काम हो रहा है, और कहाँ जो है वो एक मुसलमान भी बाकी नहीं बचा। या तो मार दिया गया, या बेदखल कर दिया गया, या ईसाइयत में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल भी जो है ना वो हमें इस मखमसे में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी मुमलिकत खुदादाद है और इस्लामी जमहूरिया है और मुसलमानों की जो है वो 90% मेजोरिटी है तो कुछ नहीं होने वाला है। जी नहीं, सब कुछ होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ कर सकते हैं और हमारे वहम गुमान से बालातर होकर के तरीकों से कर सकते हैं, और किया है माजी करीब के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। लेकिन बहरहाल, जब अच्छे ज़माने थे और मुसलमान जो है वो अच्छे काम कर लिख कर किया करते थे, तो फिर उनमें ऐसे ऐसे उलमा पैदा हुए कि जिन्होंने ऐसी तफासीर लिखी जिनसे कि हम आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अल्लामा अबू हय्यान गरनाती अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है ये, जो इस्लामी उलूम के अलावा इल्म नहव व बलागत में खसूसी महारत रखते थे। इल्म नहव जो है वो अरबी ग्रामर को कहा जाता है, यानी जुमले कैसे बनाए जाते हैं अल्फाज को जोड़ करके, ये ग्रामर का इल्म होता है और इसी को नहव कहा जाता है। और बलागत जो है वो फसाहत और बलागत, यानी कैसे जो है वो, यानी जो जुमले हैं वो यानी ऐसे हों कि जिसके अंदर जो है वो बेहतरीन तरीके से बात आगे पहुंचाई जा सके, मुखातब को समझाई जा सके। ठीक है ना, वरना जुमला तो आप कह भी सकते हैं, अगले बंदे को कोई बात ही समझ में ना आए, ऐसा भी जुमला कहा जा सकता है। ग्रामेटिकली तो वो सही होगा लेकिन समझ किसी को नहीं आएगी, वो तो वो बलागत वाला जुमला नहीं होता। बलागत का लफ्ज बलाग पहुंचाने से निकला। ठीक है, तो बलागत का इल्म जो है वो ऐसा जुमला बनाना सीखना सीखने का इल्म है कि जिससे बात को जो है वो अच्छे अंदाज से अगले बंदे तक पहुंचाया जा सके। तो ये उलूम में नहव व बलागत में खसूसी महारत रखते थे, चुनाचे उनकी तफसीर में नहव व बलागत का रंग नुमाया है। ठीक है, जो जिस जिसकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती है या एरिया ऑफ जो है वो चॉइस होती है, उसकी जो पसंदीदा जाहिर है, उसका रंग जो है फिर उसकी बात के अंदर ज्यादा नुमाया हो जाता है। वो हर आयत के अल्फाज की तहकीक, ये अल्फाज की तहकीक, ये इल्मु सर्फ कहलाता है, कॉन्जुगेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो अल्फाज की तहकीक, फिर तरकीबों के इख्तलाफ, यानी इन अल्फाज को जोड़ करके जो जुमले बनाए जाते हैं तो उनकी कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है। जुमले इस्मिया में भी बात की जा सकती है, जुमले फ़ेलिया में भी बात की जा सकती है। जुमले इस्मिया ऐसा भी किया जा सकता है कि जिसके अंदर उसका जो सब्जेक्ट है वो मुअख्खर हो और उसका जो ऑब्जेक्ट, जो उसका प्रेडिकेट है वो मुकद्दम हो। ठीक है ना, वरना तो पहले जो है वो सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद जो है वो उसका प्रेडिकेट होता है या जो भी होता है ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन बहुत सारी मुख्तलिफ तरीकों से एक जुमले को कंपोज किया जा सकता है। तो इनमें फिर मुख्तलिफ यानी इख्तलाफ होता है कि भाई ये ऐसे ज़्यादा बेहतर है, ऐसे ज़्यादा बेहतर है। तो इन्होंने अल्फाज की तहकीक भी इसके अंदर नकल करी, यानी इल्म सर्फ को भी कवर किया, तरकीबों के इख्तलाफ यानी इल्म नहफ को भी जो है वो कवर किया, और बलागत के नुकात बयान करने पर खास जोर देते हैं। ठीक है, गोया कि ये एक यानी ये ऐसा नहीं है कि गोया कि इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने तफसीर को जो है ना वो एक ग्रामर की किताब बना दिया, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि तफसीर का मकसद जो है वो ग्रामर सीखना सिखाना ये है ही नहीं। सही है, और ये हमारे अकाबरीन में से हैं तो इनका ये मकसद हरगिज नहीं था, लेकिन चूंकि इनकी ये इनकी एक्सपर्टीज थी इसके अंदर, इनकी महारत थी, तो वो रंग जो है फिर नुमाया नजर आता है। लेकिन असल काम तो कुरान मजीद के मानी को खोल के बयान करना, ये है असल में तफसीर का मौजू। तो तफसीर अल बहर अल मुहीत, ये एक अहम तफसीर है। फिर उसके बाद अगली हजरत लिखते हैं अहकाम अल कुरान लिल जस्सास, ठीक है, जस्सास रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम अबू बकर जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, ये फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह नहीं, जो कि तफसीर कबीर के मुअल्लिफ थे वो फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये इमाम अबू बकर जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है। 370 में इनकी वफात हुई थी, यानी बहुत ही इब्तदाई दौर के थे ये अबू बकर जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह, जो फुकहाए हनफिया में एक मुमताज मकाम के हामिल हैं। तो उनकी इस किताब का मौजू कुरान करीम से फिकी अहकाम और मसाइल का इस्तेंबात है, और उन्होंने मुसलसल आयतों की तफसीर के बजाय सिर्फ उन आयतों की फिकी तफसीलात बयान फरमाई हैं जो फिकी अहकाम पर मुश्तमिल हैं, ठीक है, जैसे तयम्मुम का तरीका, वुजू का तरीका। ये कुरान मजीद के अंदर वुजू के ऊपर बाकायदा आयात हैं कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वामसहू बिरुउसिकुम व अरजुलकुम इलल कअबैन। अब वुजू के जो है वो बाकायदा इसके अंदर फ़राइज़ बता दिए गए हैं, उसी तरह तयम्मुम के भी जो है वो फ़राइज़ बता दिए गए हैं। तो इस तरह की जो फ़िक़ही अहकाम से मुतल हैं, खसूसा ज़क़ात और जो है वो इसकी बहुत सारे अहकाम इस तरह के मामूलात के जो है वो मौजूद हैं, तो इन्होंने उनके ऊपर खाली फोकस किया। तो इस मौजू पर और भी मुतअद्दिद किताबें लिखी गई हैं, लेकिन इस किताब को उन सब में एक नुमाया और मुमताज मकाम हासिल है, ठीक है। तो ये चूंकि फुकहा में से थे तो इनकी तफसीर के अंदर फिक्ह का रंग गालिब है, ठीक है। तो जो कुछ बेवकूफ लोग, या यानी बेवकूफ को दूसरे अल्फाज में क्या कहा जा सकता है, कम अकल, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो कि बल्कि क्या कहते हैं इसको, कम अकल जिसको बेवकूफ कहा जाता है हमारी जुबान में, ऐसे लोग जो है वो उनको पता, उनको समझ में नहीं आ रही होती है बात, तो वो कहना शुरू कर देते हैं कि ये जो फुकहा है ना, इन्होंने अपनी तरफ से अहकामात बयान कर दिए हैं, ये इन्होंने अपना एक दीन बना लिया है, हनफी दीन बना लिया है, शाफी दीन बना लिया है, ठीक है। हालांकि उनको कितनी बार समझाई गई है बात कि ये अपना दीन नहीं बनाया है, इन्होंने जो है वो कुरान मजीद और हदीस मुबारक से ही अहकाम का इस्तेमाल किया है, और जिस को उन्होंने सही समझा है अपने दलाइल की रोशनी में, तो उसको जो है वो एक जगह पे कंपाइल कर दिया है, और कंपाइल करने वाले जो सबसे मुमताज इमाम थे उनके नाम से वो मंसूब हो गया, वो कंपाइलेशन जो थी, वो जो मुरतब किया उन्होंने अहकामात को कुरान और हदीस से अखस करके, ड्राइव कर करके, तो वो जो कॉम्पाइलेशन थी, वो जो सबसे मुमताज इमाम थे इस कंपाइलेशन के पीछे, उनके नाम से वो मंसूब हो गई। तो भाई ये जो अहकामात थे, इनको कंपाइल करने वाले जो पूरी की पूरी टीम थी, उस टीम के इमाम कौन थे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तो उस वजह से ये हनफी फिक कहलानी शुरू हो गई, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो है वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कंपाइल्ड फिका थी, और उनकी टीम जो भी उनके साथ उनके शागिर्द वगैरह उनकी मदद किया करते होंगे, तो वो शाफी फिक कहलानी शुरू हो गई, वो मालिकी फिक कहलानी शुरू हो गए, और वो हम्बली फिक कहलानी शुरू हो गई। किसी ने अपनी तरफ से कोई नई फिका नहीं बनाई है, ये कुरान मजीद और हदीस मुबारक और आसार सहाबा से डिराइव ही सारे के सारे अहकाम हैं। और जो बद नीयत होते हैं तो उनको पता तो सब कुछ होता है, समझ में तो सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन वो अपने मजमूम मकासद की वजह से लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि लोगों ने, ये इमाम अबू हनीफा ने अपनी बनाई भी है, उन्होंने अपनी बनाई भी है, हालांकि कुरान और हदीस को हमें खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से समझ करके खुद से अहकाम ड्राइव करने चाहिए। वो 1400 साल बाद के इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, लायर वगैरह जो भी हैं, उनको एडवाइस कर रहे हैं कि अब तुम खुद से जो है ना वो कुरान मजीद की तफसीर करो, और खुद से उसके अंदर से अपने यानी जहालत की बुनियाद पर अहकाम डिराइव करो, ठीक है। तो ये तो लेकिन इसमें मकसद क्या होता है? उलमा से दूर करना, उलमा से बदजन करना, ठीक है, और लोगों को शैतान के हवाले करना, ये असल में मकसद होता है इसका। बहरहाल ये एक तफसीर है लिल जस्सास, यानी जस्सास रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई। अच्छा, तफसीर अद्दुर्रुल मंसूर, अद्दुर्रुल मंसूर, तो ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है, ठीक है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ये मदारिस के तुलबा में बड़े मशहूर हैं, क्योंकि मदारिस के अंदर जो तफासीर बाकायदा आलिम कोर्स के अंदर या आलिमा कोर्स के अंदर पढ़ाई जाती है ना, उनमें एक बड़ी प्रोमिनेंट तफसीर है, वो है तफसीर जलालैन, ठीक है। तफसीर जलालैन, जलालैन का मतलब क्या? दो जलाल्स, दो जलाल, ठीक है। क्योंकि दो अल्लामा थे एक ही जमाने के अंदर, इसी जमाने में दो अल्लामा थे, एक का नाम था अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे का नाम था अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है ना। तो जलालुद्दीन दोनों ही थे, तो इन दोनों ने मिलकर के भी एक तफसीर लिखी थी। तो चूंकि दो जलाल हजरात ने मिलकर लिखी थी, तो उसका वो मंसूब हो गई, इस नाम से मशहूर हो गई, जलालैन शरीफ, ठीक है। तो मदारिस के अंदर जलालैन शरीफ जो है वो पढ़ाई जाती है, और भी तफासीर पढ़ाई जाती है, लेकिन जलालैन शरीफ बड़ी मशहूर है। लेकिन ये वो वाली नहीं है, ये अद्दुरुल मंसूर, ये इनकी अकेली लिखी हुई तफसीर है, ठीक है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की। और ये बड़ी जबरदस्त तफसीर है, यानी बड़ी मेजर तफासीर में इसका शुमार होता है। तो इनका 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 इनकी वफात जो है वो 910 हिजरी, यानी ये हमारे जमाने से ज्यादा क्लोज है। आजकल 1400 साल चल रही है ना, 1446 क्या चल रहा है, तो 500 साल पहले की तकरीबन। तो उसका पूरा नाम अद्दुर्रुल मंसूर फित तफसीर बिल मासूर, ठीक है, बिल मासूर। ये जो मासूर या मंसूर, ये लफ्ज़ कहाँ से आया? ये असर से आया, असर, ठीक है। और इसकी जमा क्या होती है? आसार, ठीक है। तो आसार का जो लफ्ज़ है, ये क्या है कि जो हमें आसार मिलते हैं कुरान मजीद से और हदीसे मुबारका से और सहाबे कराम से, जो हमें तफसीर के मुतालिक आसार मिलते हैं, होता है ना आसार कदीमा, वही वाला लफ्ज़ आसार, वही आसार का लफ्ज जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, कि वो जो आसार हमें मिलते हैं ना, तो उन आसार की बुनियाद पर जो तफसीर की जाती है उसको तफसीर मासूर कहते हैं, बिल मासूर कहते हैं, ठीक है। और एक और भी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं तफसीर की, यानी सबसे ऑथेंटिक और सबसे अहम शक्ल तो ये बिल मासूर, ठीक है। तफसीर बिल राय भी होती है, तफसीर बिल इशारा भी एक तफसीर होती है, ठीक है ना, उनके अलग अलग तफसीलात हैं। तो ये जो तफसीर है, ये खास जो है तफसीर बिल मासूर है, इसमें अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम रिवायात को यकजा करने की कोशिश की है जो कुरान करीम की तफसीर से मुतअल्लिक उनको मिली हैं, ठीक है, यानी जितनी वो पढ़ सके, जमा कर सके, सुन सके अपने असातिज़ाए कराम से, तो उन तमाम रिवायात को उन्होंने अपनी तफसीर के अंदर जमा किया है, ठीक है। उनसे पहले बहुत से मुहद्दिसीन, मसलन हाफिज इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सबसे पहले तफसीर का जिक्र हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मरदविया रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मुहद्दिसीन, यानी जिनकी वो साहिह सित्ता में भी ये किताब इनकी शामिल है, वो वगैरह अपने अपने तौर पर ये काम कर चुके थे, ठीक है। तो उन लोगों ने भी तफसीर से मुतालिक जितनी हदीसें मिली थी उन सब को जो है वो अपनी तफासीर में जमा करने की कोशिश पहले भी की हुई थी। अल्लामा इब्ने ये सुयूती रहमतुल्लाह ने क्या किया कि उन्होंने उन सब की बयान करता, क्योंकि वो इनसे पहले के दौर के मुफस्सरीन थे ना, तो उन सब की तफासीर में जो बयान करदा रिवायात थी उनको अपनी इस किताब में जमा कर दिया है। अलबत्ता उन्होंने रिवायात के साथ उनकी पूरी सनद जिक्र करने की बजाय सिर्फ उस मुसन्निफ का नाम जिक्र करने पर इक्तफा किया है जिसने इस रिवायत को अपनी सनद से बयान किया है, ठीक है। जैसे उन्होंने कोई हदीस बयान करी या कोई सहाबी का असर बयान किया ना, आसार उस सहाबा बयान किया ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नहीं पूरा नहीं लिखा अपनी किताब के अंदर कि इन्होंने उनसे सुना, फिर उन्होंने उनसे सुना, फिर उन्होंने उनसे सुना, फिर उन्होंने उनसे सुना, फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना। ये होता है सनद बयान करना, ठीक है। इन्होंने सनद बयान नहीं करी, बल्कि इन्होंने सिर्फ जो है वो पॉइंटर दे दिया कि ये जो है ना, ये मैंने इब्ने जरीर से ली है, ये मैंने इमाम बगवी से ली है। तो अब जो पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं वो खुद जा करके देख लें भाई सनद है ना, यानी रिपीटेशन की क्या जरूरत है। जब एक चीज पहले से किसी ने एक मेहनत करी हुई है, उसको पूरा री इन्वेंटिंग द व्हील जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ना, फिर से जो है वो आप जीरो से काम शुरू करें, भाई पहले से जिसने काम किया हुआ है तो अब आप उसके ऊपर बिल्ड करें ना, ठीक है। तो इन्होंने गोया के पिछली तफसीरों के ऊपर अपनी इस तफसीर को बिल्ड किया है, ठीक है। तो और उसकी वजह भी यही लिखी कि ताकि बवक्ते जरूरत, यानी किसी को जरूरत महसूस हो तो इसकी मुराजात करके सनद की तहकीक की जा सके, ठीक है। अब आसानी से जो है वो इन्होंने चूंकि रेफरेंस दे दिया है, अब उस आयत की तफसीर आप किसी भी तफसीर में जाकर के पीछे देख सकते हैं, वहां पे उसकी सनद मिल जाएगी, उस हदीस की सनद मिल जाएगी। चूंकि उनका मकसद क्या था, उनका मकसद था कि रिवायात के जखीरे को यकजा करना था, ठीक है। इसलिए इस किताब में भी सही व सकीम हर तरह की रिवायतें जमा हो गई, ठीक है। जैसे इब्न जरीर तफसीर के बारे में आपने पढ़ा था ना पीछे, जामे उल बयान जिसका नाम था, ये उसमें भी क्योंकि उनका मकसद जमा करना था, तो अब उन्होंने जो है ना वो ये जराह व तादील वगैरह नहीं करी कि भाई कौन सी वाली हदीस जो है वो रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कौन ज़यीफ है, कौन सी जो है वो कैसी है। तो अब इनकी तफसीर में भी सही व सकीम रवायतें जमा हो गई हैं, और सनद की तहकीक किए बगैर उनकी बयान की हुई हर रिवायत को काबिले एतमाद नहीं समझा जा सकता, ठीक है। उनकी इस वाली तफसीर में जो इन्होंने रिवायात जमा कर दी हैं, तो आओ देखा ना ताओ, हर रिवायत को जो है ना वो आगे बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है उसकी सनद जो है वो ज़यीफ़ हो या मौजूब हो, ठीक है। तो यानी ये जो तफसीर है ना, ये अहले इल्म हजरात ही इससे सही फायदा उठा सकते हैं। अवामुन नास को तो कुछ पता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, वो अगर अरबी जुबान आती है किसी अरबी आदमी को तो वह कहे मैं मुझे अरबी आती है ना, तो अब मैं जो वो तफसीर अद्दुरुल मंसूर को जब पढ़ना शुरू कर दूँ, तो उसने चूंकि बाकी उलूम हासिल नहीं किए हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा गुमराही का शिकार भी हो सकता है। तो अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह ने बाज़ मरतबा हर रिवायत के साथ ये भी बता देते हैं कि इसकी सनद किस दर्जे की है, लेकिन चूंकि तनकीद हदीस के मामले में वो खासे मुतसाहिल मशहूर है, ठीक है, यानी हदीसों के ऊपर तनकीद के भाई ये किस दर्जे की हदीस है, इन्होंने कुछ जगहों पे तो तनकीद कर दी है लेकिन अदरवाइज जो है ना ये इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ठीक है ना। बड़ी मुतसाहिल का मतलब यानी आसानी का रास्ता अख्तियार करना कि यार बस ठीक है बस नकल कर दी, बहुत तहकीक वगैरह नहीं नकल करी, इसलिए इस पर भी कमा हक़ एतमाद करना मुश्किल है, ठीक है। तो अब देखें है तो कितनी ज़बरदस्त बड़ी बड़ी किताबें और बड़े बड़े उलमा ने लिखी हुई हैं, लेकिन आवाम के लिए ये जो है ना वो सोर्ट ऑफ अनएक्सेसिबल ही है। तो इस वजह से ये जो फुल टाइम डेडिकेटेड इल्म हासिल करने की जो मेहनत है ना, जो कि मदारिस अरबिया के अंदर की जाती है, तो वो वाली मेहनत हमेशा से, यानी हमेशा उसकी जरूरत रहेगी, ठीक है। क्योंकि उस तरह से बाकायदा 8 या 10 साल या 12 साल इल्म हासिल किए बगैर आप इन चीजों की तहकीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नहीं है कि बस अरबी जुबान आती है या उर्दू जुबान आती है तो अब जो है वो हम पढ़ करके हर चीज़ को सही समझ लेंगे और सही और गलत में तमीज़ भी कर लेंगे, नहीं। इसके लिए जो उलूम की गहराई है उसकी हमें फिर भी ज़रूरत बाकी रहेगी, और वो कौन करेंगे, वो जिन्होंने फुल टाइम डेडिकेशन के साथ वो वाला इल्म हासिल किया होगा, ठीक है। अच्छा क्या लिखा आपने, जलालैन एक उस्ताद थे, उन्होंने आखिर से सूरह कहफ तक, जी जी ठीक है, हाँ जदाक मिलना। तो जलालैन शरीफ का तो वैसे यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे लिख दिया तो हम पढ़ लेते हैं आपके मैसेज को कि वो तफसीर मतलब यानी जलालैन सुयूती रहमतुल्लाह जो थे ना, उन्होंने सूरह कहफ से लेकर के आखिर तक की तफसीर लिखी थी, और जो दूसरे जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह थे उन्होंने जो है वो शुरू से लेकर के 15 पारे तक, ठीक है, तफसीर लिखी थी। तो पता नहीं ये आपने अपनी तरफ से लिखा है या कहीं से कॉपी करके इधर लिखा है, क्योंकि ये जो जुमला है ना कि ऐसी तफसीर जैसे उनके उस्ताद ने की थी, कोई आम इंसान उसमें कोई फर्क महसूस नहीं कर सकता, ये जुमला मैंने उसमें पढ़ा था, इमाम यानी तफसीर कबीर के तारुफ के अंदर ये वाले था। ठीक है, जजाकुमुल्लाह। तो वो जलालैन जो अलग एक तफसीर है, तो वो इस तरह से आधी आधी जो है ना वो दो जलाल हजरात ने लिखी थी। अच्छा, अब आखिरी तफसीर नहीं, सेकंड लास्ट तफसीर जो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यहाँ पे लिखी है वो है तफसीर मजहरी। इसके बारे में फरमाते हैं कि ये अल्लामा काजी सनाउल्लाह साहिब पानीपति रहमतुल्लाह, यानी ये हिंदुस्तान में पानीपत, जहाँ की वो बड़ी जो है ना वो हमारी सोशल स्टडीज में और पाकिस्तान स्टडीज के अंदर वो पानीपत की लड़ाई का बड़ा जिक्र आता है, तो वहाँ पानीपत के रहने वाले थे। इनकी वफ़ात जो है वो 1225 हिजरी, यानी आज से जो है वो बस 200 साल से कुछ ज़्यादा वक्त गुजरा है इनकी वफ़ात को। तो ये उनकी तसनीफ़ है, काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है। ये बहुत बड़े ये फकीह थे, ठीक है, बहुत अजीम फकीह थे, हत्ता कि इनके बारे में कहा जाता है कि इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि फ़िक़ह के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम और वो शुरू के फुकहा में उनका शुमार शुमार होता है, इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह, तो हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये अपने वक्त के बैहकी थे, अपने वक्त के बैहकी, बैहकी वक्त, ठीक है, यानी ये भी फिका के अंदर वैसे ही मुकाम रखते थे जैसा कि इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह को हासिल था, हालांकि ये जो है वो बिल्कुल अभी 200 साल पहले के जमाने में गुजरे हैं। तो इन्हों यानी उनकी ये तसनीफ है, और उन्होंने अपने शेख तरीकत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर इस तफसीर का नाम तफसीर मजहरी रखा है, ठीक है। इनके जो शेख थे, ये नक्शबंदी सिलसिले में इनका एक बहुत यानी एक अहम मुकाम है, बहुत मशहूर बुजुर्गों में से नक्शबंदी सिलसिले के, तो ये दिल्ली में होते थे, और ये उसी ज़माने में होते थे जिस ज़माने में मशहूर ज़मान हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हम असर थे। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह का तो जिक्र जो कि हमने पाकिस्तान स्टडीज के अंदर बचपन में पढ़ा है, तो वो सबको पता, या पता नहीं आप पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, तो शायद जो भी है, लेकिन तो हमारे ज़माने में तो बस बस ये एक ही बुज़ुर्ग का नाम पता था और किसी का नहीं पता था, सवाए इसके कि बाद में दूसरे अदवार में फिर दोस्त दो चार और बुजुर्गों के नाम पता चल गए थे, लेकिन शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह बड़े मशहूर हैं। ये काजी मजहर जाने जाना, इनके बारे में तो बाद में जाकर के पता चला जब मशायर से सुना इनके बारे में पढ़ा थे, तो ये इनके मुरीद थे, ठीक है, और इनको अपने शेख से इतना ही मोहब्बत थी कि अपनी जो तफसीर, तफसीर लिखना जो है ये समझने के जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा जो है ना किसी आलिम दीन का, वो है कुरान मजीद की तफसीर लिखना, ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब का दर्जा सारी किताबों से बुलंद, तो इस वजह से उसकी तफसीर का दर्जा भी सारी इस किस्म की जो भी उलूम की किताब है उन सबसे बुलंद, ठीक है। तो इन्होंने अपने सबसे बुनियाद बड़े काम का नाम जो है वो अपने शेख के नाम के ऊपर,
नहीं।
जिसको कहते हैं मोहब्बत शेख, ठीक है। तो उनकी ये तफसीर बहुत सादा और वाजह है, और इख्तिसार के साथ आयात कुरानी की तशरीह मालूम करने के लिए नहायत मुफीद। उन्होंने अल्फाज कुरानी की तशरीह के साथ मुतअल्लिका रिवायात को भी काफ़ी तफसील से जिक्र किया है, और दूसरी तफसीरों के मुकाबले में ज्यादा छान फटक कर रिवायात लेने की कोशिश की है, ठीक है। तो उन्होंने यानी इनका इल्म बहुत वसी था, और उन्होंने अपने इल्म को इस्तेमाल करके छान फटक वगैरह काफी करके तफसीर में, और ये चूंकि वैसे भी मुकदमे में जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जिन तफासीर का जिक्र किया है, ये वही तफासीर हैं जिनको कि उनके वालिद साहब ने मारिफुल कुरान में रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। तो मारिफुल कुरान के जो 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 उलूम मारिफ वाला जो जो सेक्शन होता है ना, जब आयात फिर तर्जुमा, फिर उसके बाद खुलासे तफसीर, फिर उसके बाद मारिफ व मसाइल। तो मारिफ व मसाइल में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रेफरेंस जो है वो तफसीर मजहरी का ही नज़र आता है, कम से कम मुझे तो नज़र आता है, हो सकता है मैं गलत हूँ अपने अंदाजे में, लेकिन तफसीर मजहरी बहुत ज़्यादा रेफरेंस नज़र आते हैं मारिफ कुरान के अंदर, और फिर रूहुल मानी के भी वैसे नज़र आते हैं जो अगली तफसीर है यहाँ पर। तो रूहुल मानी इसके बाद है, तो फरमाते हैं कि इसका पूरा नाम रूहुल मानी फी तफसीर अल कुरान अल अजीम व सबउल मथानी, सुभान अल्लाह, जो सात बार बार दोहराने वाली आयात है, सबउल मथानी, हजरत ये सूरह फातिहा के बारे में है ना। बहरहाल ये इसका नाम था तफसीरुल मानी, और ये बगदाद के आखिरी दौर के मशहूर आलिम अल्लामा मोहम्मद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ी 1270, ठीक है, यानी ये तफसीर मजहरी कादी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह के भी बाद इनका इंतकाल हुआ है, तो ये और भी ज़्यादा हमारे ज़माने से क़ुर्ब रखते हैं। तो ये उनकी तफसीर है और 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उन्होंने अपनी इस तफसीर को बड़ी हद तक जामे बनाने की कोशिश की है, लुगत, नहव, अदब और बलागत के अलावा, ठीक है, यानी लैंग्वेज की जो लुगत पर भी बात हो चुकी है ना, लुगत मतलब जो जुबान है, जुबानदानी, ग्रामर हो गई, अदब और बलागत, ठीक है, ये सब जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड बातें हो गई, और उनके अलावा फिका, अकायद, कलाम, फलसफा और हैयत और तसव्वुफ और मुतअल्लिका रिवायात पर भी मबसूत बहसें की हैं, ठीक है, यानी बड़ी कुशादा, कहते हैं ना कब्ज और बस्त, कब्ज कहते हैं तंग और बस्त कहते हैं फैला हुआ, कुशादा, ठीक है, तो इसमें बड़ी मबसूत बहसें करी हैं, यानी बड़ी जो है ना तफसीली बहसें करी हैं उन्होंने इसके अंदर इन तमाम उलूम के ऊपर, और कोशिश ये की है कि आयत से मुतअल्लिक कोई इल्मी गोशा तिश्ना ना रहे, कोई प्यास ना बाकी रह जाए, पूरा अच्छी तरीके से सैराब हो जाए हर बंदा पढ़ने वाला। रिवायात हदीस के मामले में भी उसके मुसन्निफ दूसरे मुफस्सरीन के मुकाबले में मुहतात रहे हैं, इस लिहाज से ये बड़ी जामे तफसीर है, और अब तफसीर कुरान के सिलसिले में कोई भी काम उसकी मदद से बेनियाज नहीं हो सकता, यानी इस वाली तफसीर को आप इग्नोर करके तफसीर का काम कर नहीं सकते, ये ऐसी जो है ना वो बुनियादी तफसीर बन गई है। तो देखें ये यानी जो बाद में आने वाले काम हो रहे हैं, ये पीछे आने वाले काम के ऊपर ये गोया कि इमारत की तरह से बिल्ड कर रहे हैं ना, पहले हजरात ने जो है वो सारी की सारी ईंटें जमा कर दी, ठीक है, फिर बाद में आने वाले हजरात ने उन ईंटों के ऊपर जो है वो इमारत बिल्ड करी, कुछ जो है वो ईंटें उसमें से जो कच्ची नजर आई जैसे कि ज़ईफ रिवायात या घड़ी हुई रिवायात, तो उनको जो है वो उन ईंटों को गोया कि ज़ईफ रिवायात वगैरह को थोड़ा सा अलग कर दिया, मौजूद होती उनको बिल्कुल ही निकाल के अलग कर दिया, कुछ ने जो है वो बिल्कुल सही सही चीज़ों के ऊपर इमारत बनाई, कुछ ने कहा कि नहीं भाई हम सारी की सारी जो जमा हो गई है उन्हीं के ऊपर इमारत इमारत बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हम ज़्यादा वाकिफ जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह से है ना, तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी उलूम है, ये भी उलूम है, ये अफजल उलूम है या आला उलूम है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सिफली किस्म के उलूम है, जमादात से रिलेटेड, ठीक है, हैवानात से रिलेटेड, लेकिन वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है ना कि शुरू में लोगों ने जो है वो बहुत ही बुनियादी बुनियादी हम बचपन में जो है वो जो चीज़ें पढ़ा करते थे, अब जो है वो उसमें जो कितनी सारी तफासील आ गई हैं साइंस की किताबों के अंदर, टेक्नोलॉजी की किताबों के अंदर, तो इस उम्मत ने भी ऐसे ही कुरान करीम की खिदमत करी। अच्छा, किसी के मैसेज आया हुआ है वो पढ़ करके फिर उसके बाद हम एक दो चीज़ें और आपको सुनाना चाह रहे थे। द वे फिक इज़ कंपाइल्ड बाई 4 बिग इमाम्स एंड वी शुड फॉलो देम ओनली, सो नाउ वट इज़ द यूज़ ऑफ न्यू तफसीर इन प्रेजेंस ऑफ ओल्ड तफासीर, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ न्यू तफासीर इन द प्रेजेंस ऑफ ओल्ड तफासीर, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू तफासीर। आप पढ़े ना जरा जा करके ओल्ड तफासीर, कुछ पल्ले पड़ेगा है, पल्ले पढ़े तो मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू तफासीर, आप जो है फिजिक्स पढ़ते हैं क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ फिजिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक साइंसेस, क्या जरूरत है फिजिक्स पढ़ने की, ठीक है ना, फिजिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो बिल्ड हुई है पीछे के ऊपर, और उसकी रेलेवेंस जो है वो हर दौर हर जमाने के हिसाब से उसके अंदर एडिशंस हुई है ना, ठीक है ना? तो अब ये जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर की जुबान मुख्तलिफ, इस दौर की जो है वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो मुख्तलिफ हो चुकी हैं, राइट? लोगों की जो है वो कवा जिसको कहते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं हमारी, वो जो है वो मुख्तलिफ हो चुकी हैं, हमारे दौर के हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब इस दौर के हिसाब से कुरान मजीद को समझने के लिए इस दौर के अंदर की तफसीर की जरूरत है ना। अब कोई कहे जरूरत क्या है, जब जो है वो इतनी बेहतरीन तफसीर रूहुल मानी मौजूद है, तो अब क्या जरूरत है 21वीं सदी में कुछ? नहीं, अभी तो यानी अभी भी वैसी जरूरत है जैसे पहले कभी जरूरत थी, ठीक है? तो ये जिस तरह बाकी उलूम के अंदर होता है, उसी तरह से भाई इस्लामी उलूम के अंदर भी ऐसे ही होता है। बेसिक सेम रहती है, लेकिन रेलेवेंस जो होती है ना वो चेंज होती रहती है, और उसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? अच्छा, जो एक दो बातें और पढ़नी थी वो ये कि ये जो हमने जितनी तफासीर के बारे में यहाँ पे पढ़ा ना, ये सारी की सारी अरबी जुबान की तफसीर है, ठीक है? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी जो असल किताब है उलूमुल कुरान, उसके बिल्कुल आखिर में जा करके ना एक दो बातें लिखी हैं, वो आज पढ़ना चाह रहा था आपके सामने इस मौजू को और इस मुकदमे वाले डिस्कशन को यानी मुकम्मल करने से पहले। तो हजरत फरमाते हैं कि ये हजरत ने ना उलूमुल कुरान किताब के अंदर सिर्फ 5 तफासीर का जिक्र किया, 5 तफासीर, ठीक है? यहाँ पर तो पांच का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तफासीर का जिक्र किया ना मारुफुल कुरान के मुकदमे में, लेकिन अपनी असल किताब में सिर्फ 5 का जिक्र किया, 4 का जिक्र नहीं किया। तो हजरत जो है ना वो 5 कौन कौन सी थी, वो थी एक तो तफसीर इब्ने कसीर, अच्छा एक्चुअली मुताखरीन की तफासीरों में से सिर्फ 5 का जिक्र किया, क्योंकि मुतकद्दमीन की भी तफसीरें अलग हैं, तो मुताखरीन की 5 तफसीरों का जिक्र किया। वो कौन सी हैं? तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर कबीर और तफसीर अबे सऊद, जो कि मारुफ कुरान कुरान के मुकदमे में उसका जिक्र नहीं है, तफसीर अबू सऊद, और तफसीर अल कुर्तुबी जिसका भी हमने पढ़ा आज की क्लास में, रूहुल मानी जिसका सबसे आखिर में हमने पढ़ा। तो इनका जिक्र करने के बाद हजरत लिखते हैं कि ये 5 तफासीर एहकर के नाचीज जौक के मुताबिक ऐसी हैं, अपने आप को एहकर कहते हैं सबसे हकीर के जौक के मुताबिक ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ इन्हीं पर इक्तफा कर ले तो इंशाअल्लाह मजमूई हैसियत से उसे दूसरी तफासीर से बेनियाज कर देंगी, ठीक है? यानी उसको अब दूसरी तफासीर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये 5 पढ़ लें काफी हो जाएगा उसके लिए। ये अहकर की जाती राय थी, उसी तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि ये मेरी जाती राय थी। बाद में अपने मखदूम बुजुर्ग हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी साहब मद्दहुल आली के एक मकाले से इसकी तकरीबन हर्फ ब हर्फ ताइद हो गई, फलिल्लाहिल्हम्द, मौसूफ अपने गिरा कदर मकाले यतीमतुल बयान में तहरीर फरमाते हैं हजरत अल्लामा बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह, कराची के अंदर जो जामे बिनोरी है, बिनोरी टाउन जिसको कहते हैं, उसके जो फाउंडर थे। तो उन्होंने अपने मकाले के अंदर जो बात लिखी ना, मुफ्ती उस्मानी साहब कहते हैं कि उन्होंने वही बात लिखी लिख दी जो कि मैं कह चुका था, तो मुझे बड़ी यानी शुक्रगुजारी की कैफियत महसूस हुई, मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि देखो मेरे दिल में जो बात आई वो ऐसी थी जिससे कि हमारे बुजुर्ग भी मुत्तफिक हैं। तो फिर मुफ्ती ये अल्लामा यूसुफ बिनोरी का वो कॉल नकल करते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि चूंकि उम्र अजीज कम है, आफात जमाना ज्यादा हैं, और हमारे दौर में हिम्मतें पस्त और अजाइम कमजोर हो गए हैं, इसलिए मैं अपने तालिब इल्म भाइयों को 4 ऐसी तफासीर की निशानदेही करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स उन पर कनाअत करना चाहे तो वो इंशाअल्लाह काफिर होंगी, ठीक है? यानी दीनी उलूम का जो तालिब इल्म है वो इन 4 को पढ़ने ना तो वो काफी होंगी। सबसे पहली तफसीर इब्ने कसीर, ठीक है, जिसके बारे में हमारे उस्ताज हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर कोई किताब किसी दूसरी किताब से बेनियाज कर सकती है तो वो तफसीर इब्ने कसीर है। जो तफसीर इब्ने जरीर से बेनियाज कर देती है, वो 30 जिल्दों वाली तफसीर इब्ने जरीर जो थी ना, जिसका सबसे पहले जिक्र किया था, तो उससे जो है ना तफसीर इब्ने कसीर बेनियाज कर देती है। यानी अब इब्ने जरीर में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इब्ने कसीर में आपको मिल जाएगा सब कुछ जो इब्ने जरीर में कहा काम का था वो मिल जाएगा। फिर दूसरी तफसीर, वो तफसीर है कबीर इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में हमारे उस्ताद फरमाते थे कि कुरान करीम के मुश्किलात में मुझे कोई मुश्किल ऐसी नहीं मिली जिससे इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तआरुज ना किया हो, यानी समझाना दिया हो कोई कुरान करीम के अंदर जो मुश्किल मकामात थे ना समझना, जिनको जरा मुश्किल हो रहा था, सारे के सारे इमाम राजी ने समझा दिए अपनी तफसीर के अंदर। और बात है कि बाज़ औकात मुश्किल का हल ऐसा पेश नहीं कर सके जिस पर दिल मुतमईन, ये और बात है कि बाज़ औकात मुश्किल का हल ऐसा नहीं पेश कर सके कि जिस पर दिल मुतमईन हो जाए। और इसके बारे में जो कहा गया है कि फी ही कुल्लु शैइन इल्ला तफसीर, तो ये खामखा इसकी जलालत कदर को कम करके दिखाना है। और शायद ये किसी ऐसे शख्स का कौल है जिस पर रिवायात का गलबा था और कुरान करीम के लताइफ उलूम की तरफ उसकी तवज्जो नहीं थी। यानी हजरत बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल कर रहे हैं कि अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक तफसीर इब्न कसीर है, दूसरी जो है वो तफसीर ये कबीर है इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की, और तीसरी तफसीर रूहुल मआनी, जो मेरे नजदीक कुरान करीम की ऐसी तफसीर है जैसे सही बुखारी की शरह फतहुल बारी। ठीक है, यानी सबसे जबरदस्त तफसीर, सबसे जबरदस्त शरह सही बुखारी की वो फतहुल बारी है। तो बिल्कुल वैसे ही कुरान करीम की जो सबसे बेहतरीन तफसीर है वो तफसीर रूहुल मानी, जिनका अभी सबसे आखिर में हमने पढ़ा था पारफ कुरान में, इल्ला ये कि फतहुल बारी एक कलाम मखलूक की शरह है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम बहरहाल मखलूक हैं, तो उनके कलाम की शरह है ये फतहुल बारी, और जो रूहुल मानी है वो कलाम इलाही की शरह है। ठीक है, अच्छा, चौथी तफसीर अबी सऊद है, जिसमें नज़्म कुरानी को बेहतरीन इबारत में बयान करने पर खास तवज्जो दी गई है, और वो बसा औकात जमख्शरी की कशाफ से भी बेनियाज कर देती है। ठीक है, तो ये चार तफासीर जो है ना, अल्लामा बिनूरी रहमतुल्लाह ने भी फरमाया कि ये चार अगर हम पढ़ लें, हमारे आज के तुलबा पढ़ लें, तो बस काफी हो जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि मैंने पांच बयान करी थी, मेरे बुजुर्ग अल्लामा बिनूरी रहमतुल्लाह ने चार बयान कर दी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो चार बयान करी थी ना, जो पांच बयान करी थी ना, उनमें से चार तो मेरे बुजुर्गों ने भी बयान करी। ठीक है, कि वो दूसरी किताबों से बेनियाज करने वाले। अच्छा, आखिरी चीज बिल्कुल फरमाते हैं कि ये बहस तो अरबी तफासीर के बारे में थी, उर्दू जुबान में हकीम उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बयानुल कुरआन अपने मजामीन के एतबार से एक बेनजीर तफसीर है। ठीक है, और उसकी कदर व कीमत का सही अंदाजा उस वक्त होता है जब इंसान तफसीर की जखीम किताबें खंगालने के बाद उसकी तरफ रुझू करे। हम लोगों को तो अंदाजा नहीं होता, हम कहते हैं ये किस किस्म की तफसीर है, अजीब अजीब दो दो अल्फाज कभी लिखे हुए, कभी जो है वो दो तीन लाइनें लिख दी हैं, कभी दो अल्फाज लिख दिए, कभी बीच बीच में इस तरह से। ठीक है, हम जो मारफुल कुरान में पढ़ते हैं ना खुलासे तफसीर, तो असल में बयानुल कुरान है, तो हमें तो उसकी अहमियत पता नहीं चलती, लेकिन हजरत कह रहे हैं कि उसकी अहमियत का उसको अंदाजा होता है जो मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद जब इस तफसीर को पढ़ता है ना, तब उसको पता चलता है कि ये कितनी जबरदस्त तफसीर है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर। अलबत्ता उसकी जुबान चूंकि इल्मी और इस्तिलाही अंदाज की है, इसलिए आम उर्दूदा हजरात को उसके समझने में दुश्वारी होती थी। इसी जरूरत के पेश नज़र अहकर के वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मआरिफुल कुरान के नाम से 8 जिल्दों में मुफस्सल तफसीर तहरीर फरमाई है, जिसमें बयानुल कुरान की शरह और तसहील भी है। यानी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है कि उन्होंने बयानुल कुरान की जो मुश्किल इबारत थी ना, उसको भी आसान उर्दू में कन्वर्ट किया, और उसके अलावा जो है वो फिर अलग जो है अपनी मारूफ व मसाइल बयान करें। तो बयानुल कुरान की शरह और तसहील भी है मारिफुल कुरान के अंदर, और असर हाजिर की जरूरियात जिंदगी पर कुरान करीम की हिदायात की बेहतरीन वजाहत भी, और तहजीब जदीद के मसाइल पर कुरानी फिक्र के तहत भरपूर तबसरा भी है। ठीक है, यानी मारिफुल कुरान चूंकि 1950s, 1960s और 1970s के अंदर लिखी गई है ना, तो उसके अंदर बहुत, यानी इस आजिज को ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल इवन 2024 और 2025 के भी जमाने के जो हालात है ना, वो भी हजरत ने अपनी इस मालूम कुरान के अंदर लिख दिए। ठीक है ना, दुनिया की जो ज्योग्राफी है वो भी प्रीटी मच अभी तक वैसी की वैसे ही है, सवाई चंद एक छोटी छोटी तब्दीलियों के, दुनिया वैसी ही उसी शक्ल में है, उसी हालात में है से गुजर रही है, मुसलमान भी उसी हालात से गुजर रहे हैं जिससे कि उस दौर में गुजर रहे थे, तो बड़ी रेलिवेंट तफसीर है ये। ठीक है, तो कहते हैं कि अब तक उर्दू जुबान में जितनी तफासीर मंजर आम पर आई हैं उनमें ये एक मुनफरिद तफसीर है जिसमें सलफ सालिहीन के मसलक व मशरब की पूरी हिफाजत के साथ असर हाजिर की जरूरियात को बतरीक एहसन पूरा किया गया है। बहमदुल्ला ये तफसीर अवाम व खवास में बेहद मकबूल हो रही है और इससे बड़ा फायदा पहुंच रहा है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की रिफत व अजमत पहचानने की तौफीक अता फरमाए, उसकी सही फहम की दौलत से नवाजे और उसकी तिलावत, उस पर अमल और उसकी नशर व अशाअत की जो हुकूक हम पर आयद होते हैं उन्हें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم علمني منه ما جهلت، وذكرني منه ما نسيت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، ولله الحمد أولا وآخرا، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه واتباعه أجمعين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.